ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
The composition of the high level committee involves people from various backgrounds and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things.
श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। मृतकों की पहचान करने और उनके पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। उधर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि गुजरात में फॉरेंसिक विशेषज्ञ डीएनए मिलान के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों और मेडिकल छात्रों सहित 254 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी पहले चरण में साइप्रस जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलिडिस के साथ वार्ता करेंगे और व्यापार जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को कनाडा पहुंचेंगे। ये दौरा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पटना में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान और स्वीप गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी मीडिया इकाइयों के साथ बैठक की। निर्वाचन आयोग के सचिव संतोष कुमार, सहायक निदेशक अपूर कुमार सिंह और राज्य निर्वाचन विभाग के अतिरिक्त सचिव माधव कुमार सिंह ने अधिकारियों को आयोग द्वारा शुरू किए गए 23 नए प्रमुख चुनाव सुधारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2025 के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। स्कोर कार्ड परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट nta.neet.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए हैं। ये हमले तल अवीव, यरूशलम और तेहरान में किए गए। इसराइल के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए और 10 से अधिक घायल हो गए। दूसरी ओर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इसराइली हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के 2 डिप्टी कमांडर मारे गए। ईरान पर इसराइल के हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित कम से कम 78 लोग मारे गए हैं। ईरान के एयरपोर्ट और एयर नेविगेशन कंपनी ने अगले नोटिस तक देश भर में सभी उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की है। उधर इसराइल का बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद है। इस बीच ईरान ने अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि वे तेहरान के जवाबी हमलों को रोकने में इसराइल की मदद न करें। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज शाम गरज के साथ बारिश हो सकती है। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए अभी और 6 रन बनाने हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।